या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 685,
इज नॉर्थ वेस्ट जमात खाना टोरंटो, संडे अप्रैल 3rd 1988, सेमिनार ऑन लाइफ आफ्टर डेथ, आखरत की तैयारी।
Composition of those who would like in other ways. What do you think? Anyhow, I'll make a mixture. Say Salvator Bola Nahatari. जुर भाई जिस रे मो मने हिते साख ए भले री भाई ते अगड़ से फल ढोया। जिर भाई जिस रे मोमने हित अच्छी करणी कमाई भाइया गल तिसे फल तैसा। उसने जिसने इस दुनिया के अंदर अच्छे काम किए उसको आखिरत के अंदर उस दुनिया में उसका इवज मिलेगा। जिसने यहां इस दुनिया के अंदर अपना नाम अपनी सांख अच्छी बनाई वहां भी उसको ऐसा ही फल मिलेगा। ये गुरप्रीत सदर दीन का चौगड़िया है। जिंदा रहो। आज का टॉपिक यह है लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ इज सर्टन इनएविटेबल, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम इट। इवन ए काफिर हु डज नॉट बिलीव इन अल्लाह He also believes in this, that he has to die one day. This is such a certainty that we have been noticing all our lives, that so many of our friends, relatives, our known, unknown people dying and going to eternity. Har ek insaan ki zindagi ke andar uske yaar, dost, bhai, biradar guzar jate hain. Hum unko dafan karke aate hain aur phir wo kabhi nazar nahi aate, kabhi nahi. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر ایسے کروڑوں لوگ ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے لیکن موت کو مانتے ہیں. یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. آج کے میرے اس سبجیکٹ کے اندر میں آپ کو الحمدللہ کتابوں سے تو کہوں گا مگر جو کچھ میں نے اپنی زندگی کے اندر سیکھا اور ایکسپیرئنس کیا ہے میں اس کا انشاءاللہ آپ کے سامنے اس میں سے کچھ تھوڑا سا ضرور رکھوں گا. دیکھو دینداروں, پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ مومن ہیں. اینڈ وی بلیو ان اللہ, we believe in his creation and also we believe he is compassionate, merciful. وہ دیا والا ہے, رحم والا ہے اور اس نے خلقت پیدا کی ہے. ہم لوگ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور جب ہم مریں گے تو ہماری مرضی پوچھی نہیں جائے گی. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں اور ہوتے ہیں کہ جن کو پوچھا جاتا ہے کہ ہم تم کو بلانا چاہتے ہیں آؤ گے, تو وہ لوگ تو تیار ہوتے ہیں جو خدا کے عاشق ہیں, جو مومن ہیں. وہ تو راہ دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب موت آئے. وہ موت کو انویٹیشن سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. جو مومن ہیں, سچے مومن, موت ان کے لیے انویٹیشن ہوتی ہے. موت ان کے لیے اریسٹ نہیں, وارنٹ آف اریسٹ نہیں. وارنٹ تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھاگ جائے, اس کے پیچھے پولیس جاتی, پکڑ لے آتی ہے, زبردستی کرتی ہے. مگر جو مومن ہوتے ہیں, جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں, دے ریسیو دی انویٹیشن. اور اس کو انویٹیشن جب آتا ہے تو قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے میں ان کے پاس بیوٹیفل, ہینڈسم, اٹریکٹیو اینڈ ریسپیکٹفل فرشتے بھیجتا ہوں, خوبصورت, ادب والے, عزت دینے والے فرشتے خدا ان کے پاس بھیجتا ہے جن کو خدا چاہتا ہے اور جو خدا کو چاہتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے پاس جو میرے فرشتے جاتے ہیں تو وہ ڈراؤنے اور بھیانک, ڈریڈ فل ہوتے ہیں, اور وہ لوگ پولیس کی طرح کام کرتے ہیں, زبردستی پکڑ کے لے جاتے ہیں. کافر ہے وہ موت سے ڈرتا ہے اور مومن موت کی راہ دیکھتا ہے اور تو کہتا ہے کب تو مجھے بلائے گا. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کا دن تو عید کا دن ہے مومن کے لیے. عید کا دن خوشی ہوتا ہے. کسی پرزنر کو یہ نیوز ملے کہ کل اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ساری رات خوشی سے سوتا نہیں. لائف آفٹر ڈیتھ کو میں تین پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کرتا ہوں. اس کے پروسیس میں پہلی چیز ہے موت, دوسری چیز ہے موت کے امیجیٹلی اس کی اکاؤنٹنگ, حساب کتاب, اور تیسری چیز ہے اس حساب کتاب کا آؤٹ کم, बैलेंस शीट प्लस में है के रेड में है। बस ये तीन स्टेजेस हैं जिसको मैं आज आपके सामने एलेबोरेट करना चाहता हूं। मैंने दो पाठ बोले और उसके पहले बेगम वालजी ने दो पाठ बोले कि हमारी ये जो काया है, ये जो बॉडी है, ये मैटर है, मगर इसके अंदर जो नूर है वो चैतन्य है। चैतन्य कहते हैं जो मैटर नहीं, और ये इशारा है डिविनिटी की तरफ। हमारे अंदर जो सोल है, जिसको हम अपनी ज्ञानिक भाषा में आत्मा कहते हैं, कुरान शरीफ की जबान में रूह कहते हैं, ये एटर्नल है, ये कभी मिटती नहीं। मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। दोस चिल्ड्रन यंगस्टर्स और दोस पीपल हु हैव स्टडीड साइंस एंड पर्टिकुलरली द फिजिकल साइंस एंड फिजिक्स, दे नो मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैटर। इट मे चेंज इट्स पोजिशन और कंडीशन, बट मैटर इज नॉट डिस्ट्रॉयबल। इफ मैटर इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल, देन हाउ कैन द सोल इज डिस्ट्रक्टिबल? नो, इट इज ऑल्सो नॉट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैटर हैज ए लिमिट, लिमिट ऑफ टाइम एंड इट्स एज। ए डे विल कम वेन गॉड विल डिस्ट्रॉय द मैटर कंप्लीटली, बट दैट डे वी डोंट नो। बट द सोल इज डेफिनेटली एटर्नल। आत्मा है, वो नूरी चीज है, वो हमेशा रहने वाली है। आत्मा कभी मरती नहीं, मिटती नहीं, बिगड़ती नहीं, खराब नहीं होती। तो सवाल यह है कि हमारे अंदर अगर आत्मा पाक है, अच्छी है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो कौन सी चीज अंदर खराब होती है? हमारी यह एक बॉडी है, ये मैटर से बनी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, लगभग वो तमाम एलिमेंट्स हैं कि जो यूनिवर्स के अंदर है। अब इसके अंदर ऐसी चीजें भी हैं कि जो अबव मैटर हैं, सुपर मैटर, वो मेटाफिजिकल चीजें। हमारी बॉडी के अंदर जो है उसमें एक चीज है माइंड। माइंड मैटर नहीं है, सुपर मैटर है, मैटर से ऊंचा है। क्यों? कि जो माइंड है हम उसको किसी भी तरीके से पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। हां, हम उसकी एक्टिविटीज को जान सकते हैं। माइंड को आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ संबंध नहीं रखो, उसका समझो नहीं। इलेक्ट्रिसिटी और चीज है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी भी अभी तक हम डेफिनेटली नहीं कह सकते वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज मैटर और नॉट, बट सर्टनली ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन इज अ सुपर मैटर। मिसाल के तौर पे हमारी थॉट वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैरी अवर थॉट्स। हमारे थॉट्स हैं, उसके साथ हमारे अंदर से निकली हुई हार्ट की पंपिंग से और फंक्शन ऑफ द ब्रेन जेनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नेवर अलोन, इट ऑलवेज एग्जिस्ट विद मैग्नेटिज्म। ये जो लोह चुंबक है वो इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ रहती है, और मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट भी होती है। ये जो मैग्नेटिज्म है, इसका सबसे बड़ा मैग्नेट वो हमारी अर्थ है। दिस अर्थ इज ए बिग मैग्नेट इन ए ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स, एंड द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म इज ऑलवेज एक्टिव, कमिंग आउट ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, गोइंग राउंड द अर्थ एंड एंटरिंग बैक इन टू द साउथ पोल एंड पेनेट्रेटिंग इन साइड दिस होल ग्लोब, अगेन कमिंग आउट ऑफ द नॉर्थ And this is the fundamental principle of magnetism in physics. जितने भी लोह चुंबक और मैग्नेट दुनिया के अंदर हैं, लोखंड से बनते हैं, स्टील से बनते हैं, और उसके अंदर चाहे वो राउंड होवे, चाहे वो एक बार की शक्ल में होवे, चाहे वो हॉर्स शू की शक्ल में होवे, इन एनी वे मैग्नेटिज्म के अंदर एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट में, एक साउथ पोल है, और मैग्नेटिक रेज और फील्ड जो है वो आउटर साइड में रहती है, लेकिन ऑलवेज उसकी जो वेव्स और उसकी फोर्स है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आके अंदर एंटर होती है, दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में उसकी आती है फोर्स आती है। हमारी बॉडी में भी ऐसा है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट और सटल फोर्स के अंदर। हम जब सोचते हैं तो ये सोचना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैं आपको ये साइंटिफिक चीजें इसलिए बयान कर रहा हूं कि आपको बहुत ये समझने में, आज का लेक्चर समझने में ये चीज काम आएगी। इंसान शरीर के हिसाब से मैटर है, मगर उसके अंदर एक ऐसी फोर्स है जिसको हम मेंटल फोर्स कहते हैं, कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, मैग्नेटिज्म निकलती है और थॉट वेव्स निकलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर तीन ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको हम ट्रांसमीटर्स कह सकते हैं, आंखें, होंठ और हमारे हाथ की इंटरनल साइड, पाम एंड फिंगर्स। जादू करने वाले, हिप्नोटिस्ट वगैरह, मेस्मरिस्ट जो हैं, या रूहानी आदमी जो इबादत वाले हैं, जब वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो वो बहुत दफा अपने हाथ के जेस्चर करते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह में कुछ पढ़ते हैं। हमारे इंटरनल फोर्सेस जो हैं, हमारी जो रूहानी शक्ति है या हमारी जो मेंटल शक्ति है या हमारे अंदर जो मैग्नेटिक शक्ति है, उसके तीन ट्रांसमीटर्स हैं आंखें, होठों से निकले हुए वर्ड्स और हमारे हाथ के अंदर की साइड। ये तीनों चीजें हम स्माइली हर रोज यूज करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं। आज मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आप देखो कभी हजर इमाम इधर नेक्स्ट टाइम आवे, या आपने देखा होगा, मैं अटेंशन ड्रॉ करता हूं, मौलाना हजर इमाम व्हेन ही प्रिपेयर्स द नियाज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मुखी, सो ही टेक्स द बाउल इन हिज हैंड। मौला कुंभ लेते हैं, the bowl that kumbh is full of water, ordinary water. Maulana Hazrat Imam takes in his hand, puts his vision inside, he looks into the water and speaks something. Kuch maula padhta hai, usmo dekhta rehta hai aur phir chukara marta hai. This is niyaz. Maula ke haath lage, maula ki aankhein padi, मौला के मुंह से निकले हुए लफ्ज पड़े, दिस वॉटर इज नाउ चार्ज्ड विद डिवाइन फोर्स, जिसको हम न्यास कहते हैं। ये न्यास जो है इससे चार्ज्ड बॉडी, न्यास के एलिमेंट्स जो हैं, वॉटर के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मौला ने उसको चार्ज कर दिया है अपनी रूहानी ताकत से। हर इंसान के अंदर, मैंने आपको कहा, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है और मेंटल फोर्स है, लेकिन इमाम के अंदर रूहानी ताकत है, तो ये चीज चार्ज हो गई। हम लोग किस तरह यूज करते हैं, वैसे हम क्या कहते हैं, न्यास की प्याली उठाई दो हाथों में, यानी हमने अपनी हैंड्स की पाम्स यूज की। हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, लिफ्ट ए कप ऑफ न्यास with your right hand, hold it with your left hand, place in the palm of your right hand, and then keep your left hand under your right hand, so both palms are under that cup, so you have used your palms, Then you look into the cup and you say, Maula Baba, in your mind, Maula Baba, give me hakikati samaj. And then you what say? Farman. And you drink it. So you are using the same three transmitters. Eyes, your mouth, and your palms. At the end of the dua, we say, Shahadu Didar. We are looking into each other's eyes, uttering the words Shahadu Didar, and touching the palms of both of them. It's very necessary that your palm must come to the palm of the other person. Bahut se log jab Shahadu Didar ka panja lete hain, Shahadu Didar aisa ungliyan touch kar lete hain. It's not enough. हाथ के अंदर हाथ अंगूठे के नीचे अंगूठा आना चाहिए. The thumb under the thumb of the other person. These are the three things. Again, we are doing that. I exert my mental and my imanic force through my words, through my eyes, through my palms to the other person. And similarly, other person, he gives me the same in that way. So we are exchanging it. If that person is higher than me in spiritual matters, so I'm benefited. Agar samne wala aadmi jisko maine panja diya Shahadu Didar ka, wo mere se ruhaniyat mein zyada aage hai, to mere ko benefit milta hai. Agar wo mere se kamzor hai aur main usse aage hoon, to mera benefit usko jata hai. हमारे मजहब की जो फिलॉसफी और हकीकतें हैं निंदारो, उसमें बड़े बड़े भेद हैं. हर चीज में सिग्निफिकेंस है, हर चीज में. तो हमने ये तीन तरीके से, तीन ट्रांसमीटर्स जो हैं हमारी बॉडी और हमारे माइंड के, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी इज ब्लेंडेड, हम अपने मजहब के अंदर यूज करते हैं. लेकिन हम कॉन्शियस नहीं. आज आपको पता लगा बहुत से लोगों को कि क्या इसमें मकसद है, हजर इमाम किस तरह न्यास बनाता है. तो ये हमारे मजहब के अंदर चीजें समझने जैसी साइंटिफिक चीजें हैं. तो हमारा जो माइंड है उसकी फोर्सेस और एक्टिविटीज हैं, वो मटेरियल भी नहीं है, स्पिरिचुअल भी नहीं है, इन बिटवीन. मगर इसके ऊपर एक थर्ड चीज है, वो है स्पिरिचुअलिटी, हमारी आत्मा, हमारी रूह, द सोल विच इज एटर्नल. सारी जिंदगी, फिर वो 10 बरस की हो कि 100 बरस की हो कि 200 बरस की हो, आदमी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, इरादे या जान के बगैर या जान के साथ, जिनको इलम है वो जानते हैं. और जब वो इलम वाले, जानने वाले विद नॉलेज अमल करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है. लेकिन मोस्टली आदमी जो हैं वो इस बात के कॉन्शियस नहीं, उनको खबर नहीं. वो शाहजो दीदार का पंजा भी देते हैं तो उनके वो चार्ज मिलता है कि नहीं मिलता, वो न्याज भी पीते हैं तो उनको उसमें से फायदा मिलता है कि नहीं मिलता, हमें मालूम नहीं. जिंदगी भर हम इस तरह से अमल करते रहते हैं, एट द एंड ऑफ द लाइफ उसका अकाउंट होता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल बैटरीज की जो फोर्स है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है. बैटरीज खुदा ताला ने तुमको बिल्कुल कंप्लीट दी, फुल्ली चार्ज्ड दी, लेकिन अब तुमने इन बैटरियों को यूज तो किया लेकिन रिचार्ज किया कि नहीं किया. जब मौत आती है तो उस वक्त हमें पता लगता है कि मेरी बैटरियां चार्ज नहीं हुई. मौत एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. मौत की हकीकत थोड़ी सी मैं बयान करना चाहता हूं कि जो आज के इस लेक्चर या आवाज का एक पार्ट है. मौत का मतलब है एक चीज स्टॉप होके दूसरी चीज चालू हो गए. मौत का मतलब है एक जगह छोड़ के दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना. मौत का मतलब है किसी चीज को सुधारना या बिगाड़ना, मतलब कि उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन है उसको बदल देना, यह है मौत। मगर मजहब के अंदर, रूहानियत के अंदर हमको ये बताया गया कि मौत जो है वो खुदा की मुलाकात का मौका है, मौत है वो हिसाब किताब का दिन है, मौत है वो अल्टीमेट बिलव्ड माशूक को मिलने का एक मौका है। मौत अच्छी चीज है, अगर मौत न होती तो ये दुनिया बर्बाद हो जाती, क्योंकि इस दुनिया के ऊपर अगर मौत न होती तो इतने आदमी पैदा होते कि एक दूसरे के ऊपर रहते या बैठते या मरते या जन्मते, दुनिया की कंडीशन इतनी खराब हो जाती। मौत एक ऐसी प्यारी मां की तरह है जो गंदे मंदे बच्चे को, थके हुए रोते भूखे बच्चे को अपनी गोद में, अपने खोड़े में समा लेती है। मौत दुखों से नजात देती है, मौत दिल को तस्कीन देती है। वो लोग जो मौत मांगते हैं वो दो क्लास के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि जो सख्त दुख में है और दुख उनसे सहन नहीं होता। When a person becomes so depressed that he cannot live more tolerably, then he either commits suicide or he requests for the death. वो लोग जो दुनिया के अंदर गुनाह करते हुए या दुनिया के दुखों को सहन नहीं कर सकते, मुंझारा और दुख इतना बढ़ जाता है कि फिर सहन नहीं होता, या तो वो मौत मांगते हैं या फिर आघात करते हैं। यह मौत बहुत बुरी है, यह मौत आदमी को छुड़ाती नहीं बल्कि और बड़े खड्डे में पहुंचा देती है। दिस काइंड ऑफ डेथ विल नॉट गिव एनी रिलीफ, ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस विल पुट द मैन इनटू मोर सीवियर पेन। एंड दैट्स व्हाई इन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैज सेड that a person who commits suicide, his all good deeds are burnt away and he will be put into hell irrespective of his ibadat and bandagi. Nabi Kareem farmate hain jo aaghat karta hai uski tamam ibadat aur nek kaam jal jate hain, barbaad ho jate hain aur usko dozakh mein dala jata hai. To that extent that Nabi says any Muslim who commits suicide must not be given any kind of blessings or any kind of prayer. There is no Fatiha on the mayyat of a committer of a suicide. Nabi farmate hain jisne aaghat kiya uski body ko ghusl mat do, uske upar Fatiha mat padho, uske upar namaz e janaza mat padho, yun hi usko dafan kar do. Yahan tak कि उसको दूसरे मुसलमानों के नजदीक दफन नहीं करना, बाहर दफना, क्यों कि ही इज ए कंडेम्ड पर्सन, जिसने खुदा ताला का सामना किया, खुदा ने उसको जिंदगी दी एज ए ट्रस्ट, उसने उस जिंदगी को अपनी मर्जी से बर्बाद कर दिया। मौत मस्ट बी फ्रॉम गॉड, जो अपनी मर्जी से आघात करता है उसने खुदा की रहमत को भुला दिया। वो रहीम compassionate, merciful Mawla, he says, never be disappointed from the mercy of God. لا تقنطوا من الرحمة الله. خدا تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نراش نہیں ہونا. Never. Despondency is a sin in Islam. نراشا وادی بننا اسلام کے اندر حرام ہے, گناہ ہے. تو جو آدمی آغاز کرتا ہے, the person who commits suicide, he has become disappointed from the mercy of God, and that's why God becomes angry with him. Uske tamam gunah jal jate, uske tamam nek amal jal jate hain aur uske nek amal gunah ban jate hain. Hamare peeron ne hame ginan mein farmaya hai ke wo log ke jo gunah kabira karte hain, hanas jo sins hain, mazhab ke andar उसके अंदर एक गुनाह कबीरा सुइसाइड है, दूसरा गुनाह कबीरा है जो अपने माता पिता को दुख देते हैं, दोज पीपल हु हर्ट द फीलिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड पुट देम इन ट्रबल, गॉड विल नेवर फॉरगेट देम, उनकी इबादत काम नहीं आती। माता पिता के दिल को दुख देना खुदा ताला के नजदीक इतना बड़ा गुनाह है कि जितना बड़ा गुनाह खुदा ताला के ऊपर से ईमान निकाल देना है। हमारे मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी थी 1894 के अंदर, उसमें मौला ने अमुक गुनाहों की लिस्ट लिखी है कि ये गुनाह है जो बख्शे नहीं जाते, उनकी फॉरगिवनेस नहीं है। इन गुनाहों के अंदर एक गुनाह यह है कि इमाम की बयत करके तोड़ दी जाए, उसकी इबादत बंदगी बर्बाद हो जाती है। एक गुनाह यह है कि जो सुसाइड कमिट करे उसकी इबादत बर्बाद हो जाती है। एक गुनाह यह है कि जिसने माता पिता को दुख दिया, दे हर्ट देयर पेरेंट्स। एक गुनाह यह है कि जिस आदमी ने रेप किया उसका गुनाह माफ नहीं होता। एक यह गुनाह है कि एक इनोसेंट आदमी है और आपने उसके ऊपर खोटा आरोप डाल के उसको दुखी कर दिया। द पर्सन इज एन इनोसेंट एंड समवन हैज पुट ए ब्लेम ऑन हिम विदाउट एनी कॉज। सच ए पर्सन हु हैज पुट द ब्लेम ऑन एन इनोसेंट पर्सन विल नेवर बी फॉरगिवन, ही मस्ट बी पनिश्ड। एक यह गुनाह है कि एक आदमी ने किसी आदमी को अमानत दी, पैसे दिए, ट्रस्ट बनाया, उसको ट्रस्टी बनाया, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं मरता हूं, मेरी $1,00,000 की मिलकत है, ये मेरे बच्चों की है, छोटे छोटे हैं, तुम इसके ट्रस्टी हो। अब ट्रस्टी अगर डिसऑनेस्ट हो गया और इन यतीमों का माल खाया, सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं ही विल नेवर बी फॉरगिवन, उसके भी इबादत जल जाती है। यह गुनाह कबीरा में से आता है। इसी तरह से इमाम ने और भी दो चार बातें बताई हैं, तो मैं आपको अर्ज करता था कि हमारे पीर कहते हैं कि जो गुनाह कबीरा करते हैं उनकी इबादत तो बिल्कुल रुइन हो जाती है, लेकिन वो डिटेंशन में रखे जाते हैं। डिटेंशन हमारी इस अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर, अर्थ का एटमॉस्फेयर सब जगह एक जैसा नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल में अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ऊपर नहीं है, यानी बहुत थिक नहीं है, लेकिन इक्वेटर की साइड में वो बहुत थिक है। किसी जगह 300 माइल है, किसी जगह 400 माइल है, किसी जगह 150 माइल है, लेकिन हमारी अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है इसके ऊपर अर्थ का एटमॉस्फेयरिक सर्कल है। ये एटमॉस्फेयर सर्कल जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल काम करती है, जब इसमें से हम निकल जाते हैं तो देन इट बिकम्स वेटलेसनेस, जिसको स्पेस कहा गया, वो अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर निकल गए, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, एंड दैट इज स्पेस। स्पेस के अंदर टाइम का कोई फैक्टर नहीं। स्पेस के अंदर दुनिया की वो बहुत सी चीजें हैं कि जो दुनिया में हैं, उधर वो काम नहीं करती, मगर वहां इस स्पेस के अंदर नियर द अर्थ उधर ऊपर बहुत सी जगह हैं, ऐसे छोटे छोटे टाउन हैं, छोटे छोटे शहर हैं, इन शहरों में मकान हैं, खूबसूरत मकान हैं, इनमें बाग बगीचे हैं, गार्डन्स हैं, फ्लावर्स हैं, कूलनेस है, ठंडी हवा आती है, इसके अंदर अच्छे मकान हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, रास्तों के अंदर रोशनी है लेकिन बत्तियां नहीं। इनके अंदर मोमिन और वो लोग के जो बहुत ऊंचे दर्जे के मोमिन नहीं कि फर्दर जा सके, यहां वो ड्वेल करते हैं, यहां वो रहते हैं अपनी एस्ट्रल बॉडी के अंदर, जिसको हम रूहानी शरीर कहते हैं, और इसके अंदर कोई बूढ़ा नहीं होता। 80 बरस का बूढ़ा भी अगर मर गया और इस गांव के अंदर इस शहर में खुदा ने उसको रखने के लिए हुक्म फरमाया तो उधर वो जवान हो जाएगा। एक दफा मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह 1945 के जमाने की बात है, मौला आए, 40-50 हजार आदमी बैठा था। बम्बे के अंदर एक जगह है जिसको हम मौला की वाड़ी कहते हैं, नेस्बित रेड के ऊपर, हसनाबाद से थोड़ा नजदीक है। मौला आके बैठे, बहुत खुश थे, मता सलामत साथ थी, हुजूर आके बैठे आराम से और देखने लगे सबको। अभी तक कोई फरमान नहीं किया, सबको देखा, हंसे, सर हिलाए, एक दो मिनट तक सबको देखा। जो मौला के नजदीक मिशनरी खड़े थे, फरमान किया, मेरी दुआ आशीष दो। उसने दुआ आशीष दी। हजरत मौलाना धनी सलामत दातार फरमाते हैं कि हम अपने रूहानी फरजंदान को दिलो जान से प्यार करते हैं, दुआ देते हैं। जमात ने सर झुकाया, आमीन। फरमान सुनो, रसूलुल्लाह फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। अब जो बूढ़े बैठे थे सबकी गर्दनें झुकी और मौला हंसने लगे। उसको फिर फरमाया, इनको कहो रसूलुल्लाह फरमाया है कि जन्नत में सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा। वापस बूढ़े बेचारे नरम हो गए, सब माता सलामत को देखे हंसे और माता सलामत साहब को देखे मगर हंसे नहीं, वो भी फरमान समझी नहीं। मां बाप ने तीसरी दफा जब फरमाया और फिर सब हंस के कहते हैं, इनको कहो कि अगर बूढ़े होंगे जो दुनिया के अंदर, मरने के बाद जन्नत के अंदर उनको जवान बदन दिए जाएंगे, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। देखो दीनदारों, मैंने आपको जो बात कही उसकी समझने के अंदर एक और आइटम समझना चाहिए। हम जब पैदा होते हैं तो उसके पहले थोड़ी सी बात करनी चाहता हूं कि जो आजकल की साइंटिफिक इक्वेशन के साथ मिलती है, अबाउट बर्थ एंड लाइफ। When the sperm of father enters the egg in the ovary of mother, that sperm has a blueprint in it, blueprint that this particular sperm will grow into this kind of shape, his eyes, colors of eyes, his nose, his ears, his teeth, his hair, the color of hair, his complete complexion, his height of the body, his girth of the body, the shape of the nails, every particular thing of each and every cell that is functioning in the human body, it is already put into the blueprint which the sperm carries in its head. हिंदी जबान में बोलूं तो बाप का जो नुतफा है, वो जो कीड़ा है, वो जो एक सिंगल सेल है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर लड़का या आदमी कितना ऊंचा, चौड़ा, लंबा, खूबसूरत, बदसूरत, कैसी नाक, कैसे आंखें, कैसे कान, सब कुछ उसके अंदर कंप्लीटली उसमें वो ब्लूप्रिंट खुदा ने रखा हुआ है। और जब ये बड़ा होता है तो वो ब्लूप्रिंट के साथ एक एस्ट्रल चीज है, और वो ब्लूप्रिंट, वो एस्ट्रल चीज है, एस्ट्रल बॉडी उसके साथ चलती है। बाहर की जो बॉडी है इसके साथ साथ अंदर एस्ट्रल बॉडी है। ये बच्चा हुआ, जवान हुआ, 20-25 बरस का जब ये हो गया तब तलक आदमी की ग्रोथ होती रहती है, لڑکیوں کی گروتھ تھوڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے، 18-20 برس کی عمر تک لڑکیوں کی گروتھ سیچوریٹ ہو جاتی ہے، لڑکے 20-22-25 برس تک بھی اگتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر یہ سٹاپ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ڈکلائن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ باڈی کا سٹیمنا گھٹتا ہے، پاور گھٹتی ہے، شکل بدلتی ہے، 75-80-90 برس کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، جھوکتی ہے، مگر عموماً فلوٹ کرتے ہیں جیسے کہ ایک آدمی اڑتا ہوئے یا پنچھی ہوئے۔ یہ ایسٹرل باڈی جو ہے اس کے اندر ہمارا جیو بھی ہے، اس میں ہمارا من بھی ہے، اس میں ہمارا آتما بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ایسٹرل باڈی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں۔ یہ ایسٹرل باڈی اس جگہ جو میں نے آپ کو مکان بتائے کہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، خوبصورت باغیچے ہیں، اچھے کمفرٹیبل مکان ہیں، بہت اچھی ویدر ہے، وہاں دن بھی نہیں رات بھی نہیں، وہاں آسمان بھی نہیں زمین بھی نہیں، وہاں کھانا بھی نہیں، وہاں نیند بھی نہیں، وہاں ترس بھی نہیں، وہاں دنیا داری کی کوئی چیز نہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہیپینس میں رہتے ہیں، آرام اور مزے میں رہتے ہیں، یہ جنت ہے۔ یہ ان آرڈینری لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے لیکن اتنی عبادت نہیں کی کہ وہ اس گاؤں سے اوپر اور دوسری جگہ جا سکے، یہ ادھر رہتے ہیں مگر پرماننٹلی نہیں رہیں گے، یہاں ان کو چانس دیا جائے گا اور بھی عبادت کرو۔ ان کو ہم اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں روحانیاں کہتے ہیں، یہ روحانیاں ادھر ہی ہماری زمین کے نزدیک ہی 200-500 میل کے اوپر ہی رہتی ہیں، اور یہ زمین پہ آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، دن کے وقت نہیں آتے، کیونکہ جو لائٹ کی ریز ہیں ان کی ایسٹرل باڈی کو پنچ کرتی ہیں سوئی کی طرح، اس کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں۔ سورج اگر ادھر ہے تو یہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں، ان کے جو مکان اور ان کے جو قصبے اور ٹاؤنز ہیں وہ ان کی مرضی سے موو ہوتے ہیں، ہم موٹر کار کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، یہ لوگ اپنے مکانوں بھی اچھا کرتے ہیں تو ان کے سارے کا سارا ٹم بدلتا ہے۔ اگر سورج ادھر ہے تو زمین کے پیچھے اندھیرے کی جگہ کے اوپر یہ آ جاتے ہیں، اگر سورج یہاں موو ہوتا ہے تو یہ اندھیری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اندھیری جگہ، مگر ہماری نظر میں جو اندھیرا ہے وہ ان کی نظر میں نہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ وہاں دھوپ چھاؤں بارش وغیرہ ایسی ویدر کی کوئی چیز نہیں، لیکن سورج کی روشنی ان کے ایسٹرل باڈیز کو پنچ کرتی ہے، اس لیے روحانیاں رات کے وقت موسٹلی نیچے آتی ہیں، جس جس جگہ کے اوپر انہوں نے عبادت کی ہے وہ اس جگہ کو وزٹ کرتی ہیں، اپنے مات پتا کی، سگے کٹمبی پیاروں کی بھی وزٹ کرتے ہیں، فیملی کی وزٹ کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی ایسٹرل باڈی کی جو فریکوینسی ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو گراسپ نہیں کر سکتی، لیکن ایک نشانی بتاتا ہوں، اچھی روحیں، اچھی روحانیاں جب فیملی کو وزٹ کرتی ہیں تو ایک نشانی ہے، کوئی بھی وجہ کے بغیر، وداؤٹ اینی کاز، ہم کو لوبان کی باس آتی ہے، لوبان ہے ہی نہیں، اگربتی ہے ہی نہیں، لیکن وی آر اسمیلنگ اٹ، دیٹ شوز دی روحانی ہیز وزٹڈ اور از وزٹنگ۔ یہ روحانیوں کے آنے سے لوبان جیسی خوشبو نکلتی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ، خدا تعالی نے جو موسیٰ نبی کے اوپر تورات اتاری، اس کے اندر خدا نے حکم فرمایا ہے کہ لوبان کرو اپنے جماعت خانوں کے اندر، لوبان کرو اپنی عبادت کی جگہ کے اوپر، لوبان کرو، پرٹیکولرلی لوبان۔ اگربتی تو ابھی نکلی، اگربتی کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا جماعت خانوں کے اندر، گھر میں تو میں بھی رکھتا ہوں، لیکن جماعت خانوں کے اندر ہم نے کمفرٹ کے لیے، ایزی ہو گیا، کنوینئنٹ ہوا، اس لیے اگربتیاں رکھ دی۔ اگربتی کے اندر ایک لکڑی ہے، اس کا کاربن بھی ساتھ جلتا ہے جو روحانیوں کو پسند نہیں، اگربتی نہیں ہونی چاہیے، لوبان ہونا چاہیے۔ یہ لوبان جس کو عود بھی کہتے ہیں رسول اللہ کے فرمانوں میں ہے، ہم کے پیروں نے بھی ایسا کہا۔ اگربتی کیسے بنتی ہے؟ dust of the wood, लकड़ी का भूसा, उसमें थोड़ी सी गम वगैरह या गूंदर मिक्स करके तो उसको चोट देते हैं और ये अगरबत्ती बनती है। उसके अंदर लकड़ी भी है, उसके अंदर वो ग्लू या गम भी है और उसके अंदर थोड़ी खुशबू डाल देते हैं। लकड़ी का भूसा है, लोबान नहीं। लोबान जिसको बेंजोइन कहते हैं, एलो भी कहते हैं, मोस्ट एंटीसेप्टिक चीज है लोबान, मोस्ट एंटीसेप्टिक। कोई ऐसा वूंड होवे शरीर में कि जो वूंड हील नहीं होता, लोबान को पीस डालो पानी में और उसका चिकना चिकना ये मैटर लेके क्रीम की तरह बन जाए, एक कपड़े के ऊपर लगा के जिधर वूंड है उधर रख दो, फिर खोलना नहीं, रहने दो इसको, पानी नहीं लगने देना, 8-10 दिन के अंदर हीलिंग आ जाएगी। जो कोई दवा से नहीं आएगी, लोबान उसको हील कर देगा। लोबान के अंदर एक बड़ी खासियत ये है कि कोई भी चीज जो लोबान के धुएं में रखी जाए, वो धुआं, लोबान का जो स्मोक है, एक्चुअली वो लकड़ी की तरह का स्मोक नहीं, उसमें कार्बन नहीं है, मगर जब ये हम नियाज की प्याली उसके ऊपर रख के रखते हैं तो सारी प्याली माइक्रोस्कोपिक फिल्म से भर जाती है। ये माइक्रोस्कोपिक फिल्म जो लोबान की आ गई, ये मोस्ट एंटीसेप्टिक है। कोई भी आदमी कभी बीमार भी पिएगा तो एक दूसरे के जर्म्स उसको ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर आपके घर के अंदर लोबान जलाते रहोगे, पहली चीज तो यह है कि खूबसूरत रूहानियां, प्यारी प्यारी, आपको फायदा देने वाली, आपकी मदद करने वाली, दुआ मांगने वाली रूहानियां विजिट करेंगी। और दूसरा फायदा यह होगा कि तमाम जितना भी स्ट्रक्चर है रूफ का, सीलिंग का, वॉल्स वगैरह का, लोबान की माइक्रोस्कोपिक फिल्म से भर जाएगा। उसमें अंदर बैक्टीरिया, जीव जंतु नहीं रहेंगे। इट्स मोस्ट एंटीसेप्टिक। हमारे पीरों ने जो चीजें कही, हमारे मजहब की हर चीज में बड़ी साइंस है, बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो ये रूहानियां जब आती हैं तो अपने साथ बरकतें लेके आती हैं, खुशियां देती हैं। ये रूहानियां हमको दुनिया में हेल्प करती हैं। अल्लाह ताला ने इनको फरिश्ते कहा है क्योंकि वो फरिश्ते के दर्जे पे हैं। अल्लाह फरमाता है कि हमारे हुक्म से बहुत से फरिश्ते दुनिया के ऊपर जाके इंसानों की मदद करते हैं। इंसानों की मदद क्या करते हैं? ड्राइव करते 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 ऑल ऑफ ए सडन कोई सामने से गाड़ी आ गई या कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, और या का हमारा ख्याल नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली नामालूम किस तरह गाड़ी बच गई, स्टॉप हो गई या इधर चली गई। खुदा ने हमें बचा लिया, कोई रूहानी ने आके आपकी मदद की है, एक्सीडेंट में से बच गए, या कभी एक्सीडेंट हुआ तो छोटी सी थोड़ी सी तकलीफ मिली, बड़ी नुकसान से बच गए। सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, इवन बीमारियां और भी कई ऐसी चीजें हैं कि जो खुदा ताला के हुक्म से ये रूहानियां कि जो नेक होती हैं, ये दुनिया के अंदर घूमती रहती हैं और लोगों की मदद करती हैं। वो अपनों की मदद भी करते हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं। ये रूहानियां यहां रहती हैं, जमीन की विजिट करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इधर ये लोग इबादत करते हैं। वहां खाना पीना, बाल बच्चे, बिजनेस, रोजगार कुछ नहीं, हर वक्त वो इबादत में रहते हैं, तो उनको रूहानी तरक्की मिलती रहती है। फिर थोड़े टाइम के बाद ये गांव छोड़ के वो ऊपर चली जाती हैं और ऊंची जगह के ऊपर। इस तरह हजारों पंक्तियां हैं, हजारों लेवल्स हैं, बढ़ते 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 ये हाई क्लास मुकर्रबीन फरिश्ते जो खुदा के नजदीक रहते हैं, जिब्रील अमीन की तरह के, महकाइल की तरह के, इसराफील की तरह वहां पहुंचते हैं और एक दिन खुदा के नूर में मिल जाते हैं। अभी ये प्रोसेस हजारों साल का लंबा है। तो ये एस्ट्रल बॉडी इस जगह रहती है, एक खास लेवल के बाद एस्ट्रल बॉडी डिस्कार्ड हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, और उसके साथ जो जीव है, जीव मींस लाइफ फोर्स। देखो दिनदारों, झाड़ है, ए ट्री हैज ए लाइफ, बट द ट्री हैजंट गॉट सोल। ट्री में सोल नहीं, लाइफ है। तो जो लाइफ फोर्स है ना, इसको हमारी इस्माइली जबान में जीव कहते हैं, हमारे गिनानों में उसको जीव कहा गया है। खुश होता है, जीव खुश होता है, नाराज होता है, जीव नाराज होता है, भूख से जीव को राहत मिलती है, नींद करने से जीव को राहत मिलती है, शरीर को भी मन को भी, लेकिन ये जीव है। आत्मा जो है ना वो तो राजा है, जो सोल है वो तो राजा है। खाना पीना दुनियादारी को सोल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो एटर्नल चीज है, मगर उसकी हाजिरी के अंदर ये सब कारोबार होता है। अगर सोल नहीं तो जीव एक झाड़ की तरह, एक कैबेज की तरह है। ये जीव एक खास मंजिल के बाद फिर अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। अब क्या रहा? मन रहा और आत्मा रही। मन जिसको हम माइंड कहते हैं, इट्स अनदर ग्रेट फोर्स। मन बहुत बड़ी ताकत वाली चीज है, मन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली ये ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमन माइंड। इन होल क्रिएशन ऑफ गॉड हिज बेस्ट क्रिएशन इज ह्यूमन माइंड। कम डाउन लिटल बिट एंड से बेस्ट क्रिएशन इज ह्यूमन ब्रेन, बिकॉज माइंड इज कनेक्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, बट माइंड इज नॉट 100% फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। इट हैज ऑल्सो सम इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सोल। यानी माइंड जो है वो हमारे ब्रेन की फंक्शन के साथ है, लेकिन ऊपर रूहानी भी है। एक लिंक बनाता हूं, बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, जीव, मन, आत्मा, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नीचे वाला ऊपर को इन्फ्लुएंस करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को इन्फ्लुएंस करता है। तो अब एक खास मरने के बाद खास लेवल के ऊपर जाके जब ये बॉडी डिस्कार्ड हो जाती है, एस्ट्रल बॉडी, जीव भी निकल गया, मन और आत्मा फ्री हो गए। मन जो है वो अक्ल के साथ ताल्लुक रखता है। अक्ल, इंटेलिजेंस, इज डिवाइन। अक्ल जो है वो रूहानी चीज है। खुदा ताला ने सबसे पहले जो कुछ भी बनाया तो वो मोहम्मद का नूर, मगर अक्ल के साथ। इसके लिए हम उसको अक्ल कुल कहते हैं। इंटेलिजेंस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह। ये अक्ल है जिसने हमें इंसान बनाया, जानवरों में नहीं, झाड़ वनस्पति में नहीं, सिर्फ इंसान में अक्ल है। अभी अक्ल दुनियावी भी है, दीनी भी है। अक्ल एक फोर्स है, उसको जिस तरह चाहो यूज करो। ये तमाम साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी अक्ल से डिस्कवरीज की। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह सिल्वर जुबली के टाइम पे दारुसलाम आए। ये फरमान मौला ने और भी जगह पे किए हैं, लेकिन दारुसलाम में मैंने पर्सनली सुना, इसलिए मौला फरमाते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उनके हेड स्वोलन हो जाते हैं, दे बिकम प्राउड, इसलिए कि उन्होंने ये सो एंड सो डिस्कवरी की साइंस में, या सो एंड सो इन्वेंशन की। मौलाना हज़रत इमाम कहते हैं, दे हैव फॉरगॉटन वन थिंग, दैट इट इज गॉड हु इंस्पायर्ड देम टू डू दिस। यानी खुदा ने उनके ब्रेन में ये इंस्पिरेशन डाली कि तुम इस तरह जाओ, तो उन्होंने डिस्कवरी की। इट्स गॉड हु हैज मेड देम टू डिस्कवर दिस पर्टिकुलर थिंग, नॉट देयर ओन विजडम और ब्रेन और इंटेलिजेंस। अक्ल इज डिवाइन। हमारा ये जो फोर हेड है, इस फोर हेड के ऊपर जिधर से बाल शुरू होते हैं, द फ्रंटियर ऑफ द हेयर, इसके इधर फ्रंट में एक छोटा सा गोला है, पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। इट इज रफली अबाउट 8 to 9 ounces इन वेट एंड दिस इज ग्रे मैटर। कभी कभी मच्छी को काटो तो मच्छी के अंदर सिर के पास दोनों साइड में ग्रे मैटर होता है, दैट इज द ब्रेन ऑफ द फिश। ये ग्रे मैटर है। इसके अंदर सेंटर में एक ऐसी लॉबी है कि जो लॉबी इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। यहां से अक्ल निकलती है, अक्ल फ्रंट में रहती है। हमारे ब्रेन का एक दूसरा भाग है कि जो पीछे की साइड में है, और वो बहुत बड़ा है, लगभग 1.5 pounds है, 20 to 25 ounces बड़ा होता है, हैवी है। लेकिन हम साइकोलॉजी के अंदर या मेडिकल साइंस के अंदर हम ये जानते हैं कि ये छोटा ब्रेन जो है ना, इट इज नोन एज अपर ब्रेन, और ये जो बड़ा ब्रेन है दैट इज नोन एज लोअर ब्रेन. अपर ब्रेन इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, और लोअर ब्रेन जो है वो एक्चुअली एक पावर हाउस है. तमाम बॉडी का जितना भी नर्वस सिस्टम है वो हमारी गर्दन के पीछे से ऊपर जाता है, और ये जो लोअर ब्रेन है इसके अंदर वो कनेक्ट होता है. हमारी तमाम बॉडी की फंक्शंस ये लोअर ब्रेन में से निकलती हैं. हमारी लेफ्ट साइड जो ब्रेन की है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि गर्दन के पीछे इस तरह क्रॉस होता है नर्वस सिस्टम. राइट साइड जो है ब्रेन की वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. और ये जो लोअर ब्रेन है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द अपर ब्रेन. अभी अपर ब्रेन के अंदर सेंटर में एक छोटी सी जगह है, एक छोटी सी लॉबी है, एक सर्टन एरिया है जिसको हम सेंटर कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. दैट इज द सीट ऑफ अक्ल. लेकिन अक्ल की जो अंदर सेंटर है दैट इज सोल. सोल लिव्स इन इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस लिव्स इन अपर ब्रेन विच फंक्शंस एज माइंड. ये चीजें हमारे पीरों ने बहुत अच्छे तरीके से, जो साइंटिस्टों को आज पता लगा है, हमारे पीरों ने सैकड़ों बरस पहले हमको बताया गया है. जाओ अगर आपके पास है तो फिर सदरदीन की गिरबावली पढ़ो. 40 पेज की किताब है, लेकिन उस 40 पेज को इलेबोरेट करो तो 40,000 पेज भी पूरे ना हो. 40 पेज की किताब गिरबावली. और एक और किताब है निकलन की गीता, जिसके अंदर इंसान की क्रिएशन, क्रिएशन की सारी वजह वगैरह, और ये तमाम सेलेशियल बॉडी की डिस्क्रिप्शंस दी है उसके अंदर. ये हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारी ह्यूमन कंडीशन आफ्टर डेथ क्या है उसके अंदर हमको कही गई. हमारे बहुत से गिनानों में ऐसी चीजें हैं. आज मैं जो कुछ भी आपको बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले से अर्ज की कि गिनानों फरमानों कुरान हदीस को इकट्ठा करके उसका एसेंस निकाल के और कुछ चीजें के जो खुद मैंने एक्सपीरियंस की हैं इनके अंदर से, वो चीजें आज मैंने आपको कही हैं. तो माउथ जो है वो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है. लेकिन अब मैं वो आपको कहना चाहता हूं कि मौत के बाद हिसाब होता है. इस हिसाब के ऊपर हमारी बाद की कंडीशन तय होती है. मौत के बाद हिसाब है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हमने किए. 24 आवर्स हमारे अंदर कंप्यूटर चालू है. ये कंप्यूटर हमारे ब्रेन में है. अल्लाह ताला फरमाता है कि हर आदमी के साथ करामन कातिबीन दो फरिश्ते हैं, द ऑनरेबल रिकॉर्डर्स. ये दो फरिश्ते हैं कि जो 24 घंटे हमारे साथ हैं और वो हमारा राइट एंड रॉन्ग लिख रिकॉर्ड कर रहे हैं. एनीथिंग व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू, व्हाट वी ड्रीम, हमारे ये दो रिकॉर्डर्स हैं. एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है. मुसलमान आलिमों ने इस तरह कहा कि एक राइट कंधे के ऊपर बैठता है, एक लेफ्ट शोल्डर के ऊपर बैठता है. लेकिन हकीकत यह है कि ये हमारे माइंड की जो दो साइड हैं उनके ऊपर, हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो लोअर ब्रेन है उसके अंदर दो साइड के ऊपर ये हैं. एक नेगेटिव फोर्स है जो लेफ्ट साइड की है, और एक पॉजिटिव फोर्स है जो राइट साइड की है. फरिश्ते जो हैं वो मुदब्बिरातुल अम्र हैं. कुरान शरीफ के लफ्ज हैं कि वो खुदा ताला के हुक्म से यूनिवर्स के अंदर, क्रिएशन के अंदर फंक्शन करते हैं. इस पर से ओल्ड ग्रीक फिलोसोफर और हिंदुस्तान के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कह दिया कि देखो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवा है, पानी है, ये सब देवी देवता हैं. देवी देवता का मतलब फरिश्ते. पानी का फरिश्ता है, हवा का फरिश्ता है, इस्लाम के अंदर भी है. हजरत इसराफील